जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा, जय गिरी वरधारी, जय गिरी वरधारी। जय यशोदानंदन, जय ब्रजजनरंजन, जय ब्रजजनरंजन। जय यशोदानंदन, जय ब्रजजनरंजन, जय ब्रजजनरंजन। यमुना तीरवन चारि, जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवन चारि, जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवन चारि, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरक्षी श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस श्रीलाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विविध संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरक्षी श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की दाय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिबोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिबोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिबोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय दो श्लोक क्रमांक 16 शुश्रुषो श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचिहि स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात् शुश्रुषो श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान् महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात् शुश्रुषो श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात् शुश्रुषो श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान् महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्
श्यान्महत्सेवया विप्रा
माताजी शुश्रूषोः श्रवण में व्यस्त श्रद्धाधानस्य श्रद्धा पूर्वक वासुदेव श्री वासुदेव की कथा संदेश कथा में रुचि ही लगाव स्यात् संभव बन जाता है। महत सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करके विप्राह हे द्विजगण पुण्यतीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हुए भक्तों की श्रेवणात सेवा से। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य, जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति के ऐसे हैं कि जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उनमें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज की को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं तो वे ईश्वर की शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर का उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो जाए तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं उन्हें श्री भगवान के सेवकों की भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना भी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे उन्हें कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वो श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार से कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए उन अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान के महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। शुश्रुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसके अंतर्गत भगवत चेतना में प्रगति करने के लिए जो न्यूनतम योग्यता क्या है इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। श्रृणवत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन न अतिदीर्घेन भगवान विशते हृदि। भागवत में ही महाराज परीक्षित इस सिद्धांत को ध्वनित करते हैं कि जो व्यक्ति भगवत चेतना में प्रगति करना चाहे उसके लिए अनिवार्य है श्रृणवत श्रद्धया नित्यम, उसे नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। गृणतश्च स्वचेष्टितम, दूसरा प्रयत्न करके उसे स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात कुछ उसे अपनी ओर से भगवान के समक्ष प्रयास व्यक्त करना है, अभ्यास की आवश्यकता है। तीसरा, अगर कोई ऐसा करे कालेन न अति दीर्घेन, बहुत शीघ्र ही भगवान विशते हृदि, भगवान ऐसे भक्त के हृदय में प्रकट होकर उनके हृदय के सभी अनर्थों का नाश कर उनके हृदय के भीतर कृष्ण भक्तिमय भावना जागृत करेंगे। मार्गा बभूव संदिग्धाः तृणै छन्ना ही असंस्कृताः न अभ्यास मानो श्रुतय द्विजय कालेन चाहता। वर्षा ऋतु में जब गांव के पगडंडी बहुत अधिक वर्षा के कारण जो घास उगता है उससे आवृत हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में उन खेतों के बीच चल रहे पगडंडी को हम भली भांति देख नहीं पाते अगर 3-4 महीने बाद देखें, क्योंकि कच्चा रास्ता है। लेकिन कच्चे रास्ते में वर्षा ऋतु के समय लोग चलते नहीं, तो आसपास का घास उगकर वो उसको आवृत कर देता है, ढक देता है। तो इसलिए फिर वर्षा ऋतु के पश्चात अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर कोई जाए तो वो उस मार्ग को ढूंढ नहीं पाता कि अरे इसी रास्ते से मैं चला करता था अप्रैल मई के महीने में, अब वही कच्चा रास्ता मुझे दिखता नहीं, क्यों, क्या हो गया? क्योंकि 3-4 महीने तक हम उस मार्ग पर चले नहीं, और उन 3-4 महीनों में इतनी वर्षा हुई कि उस वर्षा के परिणाम स्वरूप घास फूस उगकर उसको ढक दिया, आवृत कर दिया। माया जवनिका छन्नम अद्या अज्ञान अधोक्षज अध्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशो नटो नाट्य धरो। तो इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि हम सभी के दिव्य चक्षु को माया जवनिका काल के प्रभाव से आवृत करने के लिए निरंतर चेष्टा करती रहती है, क्योंकि भगवान ने उनको वही सेवा दी है। तो माया देवी क्योंकि भगवान की बड़ी विनम्र दास है और भगवान ने उनको ये सेवा दी है, तो बारंबार वो प्रयत्नशील रहती है कि अयोग्य व्यक्ति को कृष्ण के निकट जाने न दे। तो इसलिए माया जवनिका अर्थात मायावी विचारधारा से हमारी चेतना उसी प्रकार आवृत हो जाती है जैसे ग्रामीण पकडंडी वर्षा ऋतु के समय घास फूस से आवृत हो जाती है। तो दशम स्कंद के श्लोक में वर्णन आया है कि जिस प्रकार किसी कच्चे रास्ते पर निरंतर चलते रहना पड़ता है तभी वो मार्ग स्पष्ट बना रहता है, उसी प्रकार शास्त्र के मार्ग पर नियमित रूप से चलते रहना पड़ता है और जब तक हम इस श्रवण पथ पर नियमित रूप से चलेंगे नहीं, ये श्रवण पथ भी मायावी घास फूस से आवृत होकर आपकी चेतना को भटका देगा और देखते ही देखते आप पता नहीं कौन से मार्ग पर चले जाओगे। आपको लगेगा अरे इसी रास्ते से आता था लेकिन स्पष्ट दिख नहीं रहा। क्यों दिख नहीं रहा? क्योंकि नियमित रूप से जब आपके पग के चाप उस घास पर पड़ेंगे तब तो वो नीचे दबेगा और तब तो वो स्पष्ट मार्ग परिलक्षित होगा। तो इसलिए ये शास्त्रों का श्रवण पठन कीर्तन और अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। रसाभास होए यदि सिद्धांत विरोध सोहिते न पारे प्रभु मने होए क्रोध। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो निरंतर हरिनाम संकीर्तन के उन्माद में निमग्न रहते थे। महाप्रभु कीर्तन ही किया करते थे, हरिनाम लेते रहते थे और महाप्रभु पूरी तरह उस कीर्तन के भाव में मग्न रहते थे। चौदिके ते सब लोक बोले होरी होरी प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरी। महाप्रभु नृत्य किया करते तो चारों ओर वैष्णव समुदाय उनको घेर कर उनके इस सुंदर जाज्वल्यमान तपाए हुए सोने की भांति देदीप्यमान देह के अंग कांति को देखते ही रह जाते और महाप्रभु के मुख से कृष्ण वर्ण प्रकट होते हुए उन शब्द के बूंदों को स्वीकार कर कृष्ण भक्तिमय अनुभव करते। तो महाप्रभु तो निरंतर हरिनाम में ही लगे रहते और उन्होंने अगर सिद्धांत के ऊपर कोई विचार विमर्श किया तो कुछ सिद्धांत में पारंगत विद्वानों के साथ ही, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि, और फिर रस के विषय में चर्चा की तो केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ। तो महाप्रभु के सिद्धांत पोषक वार्तालाप बड़े सीमित रहे, लेकिन महाप्रभु ने असीमित मात्रा में लोगों के समक्ष हरिनाम के अंदर क्या मिठास ठूस ठूस कर भरा हुआ है उसका विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस 16 अक्षरीय महामंत्र को कोई सामान्य शब्द मत मानो। संपूर्ण ब्रह्मांड में अनंत कोटि जन्मों से खोज रहे सुख को इस महामंत्र के 16 अक्षरों के अंदर आप पाओगे। और ये विज्ञापन महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और श्रील रूप गोस्वामी पाद ने उसको अपने सुंदर काव्य के अंदर अंकित कर दिया और शब्दों में बांध दिया इस भाव को। तुंडे तांडवनीम रतिम वितुनते तुंडावनी तुंडावली लब्धये, अर्थात जब मैं हरिनाम उच्चारण करता हूँ तो मेरे मन में इच्छा होती है कि मेरे कोटि कोटि कर्ण हो, कोटि कोटि मेरे जिह्वा हो। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का मूल केंद्र हरिनाम संकीर्तन रहा। लेकिन महाप्रभु जानते थे कि जब तक शास्त्रों का हम अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्रों का आश्रय नहीं लेंगे, लोग भविष्य की पीढ़ियों में इस भक्ति के मार्ग को सरल मानकर सहजिया बन जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को समय देकर सिद्धांत के विषय में विस्तृत वर्णन किया और उनको ये आदेश किया कि आप इन सभी शास्त्रों की रचना कीजिए। कौले न वृंदावन के लिए वार्ता लुप्ते तित्वाम क्या भय तुम विशिष्य कृपामृते नाभिशिषेश्च देवस तत्रैव रूपम च सनातनम च। तो इस गुरुवार को हम लोग श्रीला रूप गोस्वामी पाद का आविर्भाव दिवस मनाएंगे। राधा गोविंद झूलन यात्रा एकादशी के दिन वो हम हर साल मनाते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने गौड़ीय सिद्धांत के बड़े स्पष्ट निर्मल और ऊंचे पताका को पूरे जगत के समक्ष फहराने का उत्तरदायित्व दिया। तो इसलिए कालेन वृंदावन केली वार्ता, काल के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की लीलाएं लुप्त हो गई थीं। लुप्तेति ताम ख्यापयतुम विशिष्य, और रूप और सनातन को महाप्रभु ने ब्रज के उस रस को और ब्रज के भक्तगण किस प्रकार कृष्ण की सेवा में लगे हैं उस भाव को प्रकट करने का उत्तरदायित्व दिया। क्योंकि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो भाव था वो अद्वितीय था, अनिर्वचनीय था, और श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति के उस रस को लेकर जगत में वितरित करना चाहते थे। नंदह किम अकरोद ब्रह्मन श्रेय एवो महोदया यशोदा च महाभाग पपोस्याह स्तनम हरे है। जैसे वात्सल्य भाव नंद और यशोदा ने किस प्रकार कृष्ण के साथ, कृष्ण को अपना सामान्य शिशु मानकर उनके साथ लीला क्रीड़ा की। नंद किम अकरोद, नंद महाराज ने क्या किया है कि नहीं, और यशोदा माई जो थी वो भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रिय थी, श्री कृष्ण को अपना शिशु मानकर उनको एक सामान्य वत्स की भांति पालन कर रही थी। तो इसलिए जो यशोदा माई नंद महाराज की भक्ति सुमातु स्विन्न गात्राय विसृष्ट कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने, यशोदा माई ने किस प्रकार वात्सल्य स्नेह प्रकट किया। और इसलिए हाँ, जो यशोदा माई ने किया उसको कहते हैं कि वास्तव में यशोदा माई को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कृपा दी जो ब्रह्मा को नहीं, जो शिवजी को नहीं, और जो स्वयं लक्ष्मी को भी नहीं दिया, वो विमुक्ति यशोदा माई को भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि नहीं। व्हाट इज दैट वर्स, हाँ, नेमम विरिंचो न भवो न शरीर अपि अंग संश्रया प्रसादे लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात। कि अपने पुत्र ब्रह्मा जी, अपने पौत्र शिव जी, अपनी पत्नी लक्ष्मी जो सामान्य सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन के सबसे निकटतम सामाजिक संबंध हैं, जिनके प्रति सबसे अधिक आसक्ति और स्नेह होता है, उन सभी को जो कृष्ण ने नहीं दिया, प्रसादे ऐसी कृपा ले भी रे गोपी, उस गोपी को दिया जिन्होंने अपना भाव अपने हृदय के भीतर गुप्त रखा, यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात, उसको विमुक्ति प्रदान की। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माई का स्तनपान किया, माता का स्थान दिया और तत्पश्चात गोपियों के साथ कृष्ण ने लीला रचाई। जो गोपियां वास्तव में विवाहित थीं, उनको भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि के समय रास लीला के लिए बुलाते थे, आमंत्रित करते थे। तत्क्षण बिना कोई सामाजिक लज्जा का विचार किए, सामाजिक रूप से बहिष्कार होने के भय को तिलांजलि देकर वो सारी गोपियां भागी भागी कृष्ण के निकट पहुंच जाती थीं। अर्थात अपने निजी स्वार्थ के भावना से पूर्णतः मुक्त होकर वो जाती थीं। विक्रीडितुं ब्रजवधूभिर इदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो न शृणुयात् अथ वर्णयेत् यत्। ये भाव इतना ऊंचा है, इतना निर्मल है, इतना श्रेष्ठ है कि जो प्रवक्ता और जो श्रोता गोपियों के भगवान श्री कृष्ण के इन रास लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेगा, उसके हृदय के काम वासना पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। तासाम आविरभूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन वो कामदेव को भी आकर्षित करने की शक्ति रखते थे, साक्षात मन्मथ मन्मथ। और ऐसे कृष्ण के साथ गोपियों ने लीला रचाई। जो ग्वाल बाल मित्र थे वो कृष्ण को सामान्य अपना मित्र मानकर चलते थे और कृष्ण के साथ इस प्रकार आदान प्रदान करते थे मानो कोई वो सामान्य व्यक्तित्व हो। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैव मायाशितानाम नरदारकेन साखम विजहुरु कृत पुण्य पुंज। कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों के संचय से वो इस स्थान को प्राप्त कर चुके थे। निश्वम तजंति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्य मृतविदो दत्त दक्षिणम। तो गोपियां कृष्ण को उलाहना करती हैं कि आप हमें छोड़कर चले गए और आप हमें दर्शन नहीं दे रहे, हमको आपने आश्वासन दिया था कि आप हमें अपना संग लाभ दोगे। निश्वम त्यजन्ति गणिका, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति वैश्या को धन दे दे तो उसके बाद वैश्या उसको तुरंत भगा देगी और दूसरे किसी कस्टमर के पास चली जाएगी। अकल्पम नृपतिम प्रजा, जब प्रजा के इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो प्रजा मिलकर राजा को समाप्त कर देती है। अधीत विद्या आचार्यम, भौतिक स्तर पर स्वार्थ से प्रेरित कोई शिक्षा ग्रहण करे तो वो अपने शिक्षक को तब तक सलाम करता है जब तक उसकी डिग्री न मिले। एक बार उसकी डिग्री मिल जाए तो फिर वो उसको भूल जाता है। ऋतविदो दत्त दक्षिणम, और जब किसी पुरोहित को दक्षिणा मिल जाए तो फिर वो अधिक समय नहीं रुकेगा क्योंकि उसका अगला अपॉइंटमेंट रहता है। खगा बीट फलम वृक्षम, और जो वृक्ष पे फल नहीं तो फिर चिड़िया वहां बैठकर क्यों गीत गाएंगे, उन्होंने थोड़ी हमने पेमेंट दिया है, वो तो इसलिए बैठे हैं कि यहां पर कुछ फल मिलेगा। और भुक्त्वा चा अतिथयो गृहम, और जो अतिथि आया है वो भी तब तक रुकेगा जब तक भोजन न परोस दिया जाए। एक बार भोजन होने के बाद उदर भरण हो गया तो वो अधिक समय नहीं रुकेगा। तो इसलिए दग्धम मृगारण्यम जारा भूत्वा रताम स्त्रियम, और जब वन ही जल जाए तो फिर पशु क्यों टिकेंगे। और अगर कोई कामुक व्यक्ति की इच्छा पूरी हो गई तो फिर वो अपने प्रेमी प्रेमिका को त्याग देंगे। तो ये गोपियां इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण को कहते हैं कि प्रेम और अनुराग के आदान प्रदान में दो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के चिन्ह होते हैं। पहला विरह या दूरी, और दूसरा अपने स्वामी या प्रेमी की अनिश्चितता। तो इसलिए लव इज टेस्टेड बाय अनसर्टेनिटी एंड सेपरेशन। तो इसलिए गोपियां कहती हैं कृष्ण को कि आपका हमारे साथ आदान प्रदान बड़ा अनिश्चित है, कब आप हमारा साथ दोगे, कब छोड़ दोगे, कोई भरोसा नहीं। और दूसरा, कभी आप साथ में रहते हो, कभी अचानक दूर चले जाते हो, और विरह कब तक रहेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। सो सेपरेशन एंड अनसर्टेनिटी टेस्ट द क्वालिटी ऑफ लव। क्योंकि जब कोई सेवा करता है तो इसकी इच्छा होती है कुछ तो आदान प्रदान हो, स्वामी कम से कम कुछ बोले नहीं तो मुस्कुरा तो दे, भले मुस्कुरा ना दे कम से कम आंखें तो ना दिखाए, तो कम से कम कुछ तो प्रेम के आदान प्रदान की आशंका और आशा को लेकर ही तो बेचारा दास चलता है। अगर उतना भी उसे ना मिले तो फिर वो सोचे कि हम यहां क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति हो कि दास स्वामी को देख ही न पाए, न मिल पाए, न समझ पाए, न बात कर पाए, न वार्तालाप कर पाए, न उनके मन के भाव को समझ पाए, और फिर स्वामी भी कभी अपने आदेशों को हर क्षण बदलता चला जाए, उनके आदान प्रदान में बड़ी अनिश्चितता हो, तो ऐसे अनिश्चितता और विरह के दलदल में दास के दासत्व और सेवा की भावना धीरे धीरे धसने लगती है, और फिर वो दलदल में डूबने लगता है, और उसको लगने लगता है कि दास बना रहूं, और दास के बदले वो उदास हो जाता है। तो इसलिए भक्ति अर्थात भगवत भक्तितः सर्वम इति उत्सृज्य विधेरपि कैंकर्यम कृष्ण पादैक आश्रयत्वम शरणागति। तो दास का अर्थ यह है कि भगवत भक्तितः सब कुछ कृष्ण के लिए करना, कैंकर्य कृष्ण पादैक कृष्ण के चरणों को सर्वोपरि मानकर चलना, दूसरा भक्ति के माध्यम से भगवत भक्तितः, तीसरा और इस भगवत भक्ति के भाव में कोई विरोधाभास तत्व आ जाए, शास्त्रों के आधार पर भी कोई हो, वेदों में पुराणों में उपनिषदों में कोई ऐसी बात हो जो हमारे भक्ति के भाव के विरोध में हो, तो उसको भी त्याग देना। तो इसलिए भक्ति दासत्व और प्रभु का संतोष ये बहुत ही ऊंचा तत्व है, और श्री चैतन्य महाप्रभु इसको वितरित करने आए। लेकिन इस जगत में जो व्यक्ति मिथ्या अभिमान से प्रेरित होकर अपने भोग और नियंत्रण के विकृत चेतना को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है, एंजॉयरशिप एंड कंट्रोलरशिप, तो उस व्यक्ति को ये दासत्व का भाव सुनकर ही हृदय अवरुद्ध हो जाता है, और उसको लगने लगता है कि अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा और एंजॉय नहीं करूंगा, मेरे हाथ में नियंत्रण न हो और भोग की सामग्री न हो और भोग करने की अनुमति न हो, तो फिर मैं जीवन में करूंगा तो क्या करूंगा। एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि आप लोग हरे कृष्ण वाले रिक्रिएशन के लिए करते क्या हो, मनोरंजन के लिए क्या करते हो? तो प्रभुपाद ने कहा, हम लोग का तो 24 घंटा ही मनोरंजन है, क्योंकि जो आरंभ से लेकर हम लोग प्रातःकालीन मंगल आरती करते हैं, और उसके बाद से जो श्रवण कीर्तन जितना कुछ हमारे भक्ति में नवविधा भक्ति के अंतर्गत मार्ग दिया गया है, उससे हमारा मन प्रफुल्लित होता है क्योंकि हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ये बड़ी चिंता थी कि भाई गोलोक वृंदावन में मंजरियां जिस प्रकार बिना किसी स्वार्थ के श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों की सेवा में लगी रहती हैं, उस उच्चतम स्तर को मैं इस जगत में प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूं, कलयुग के व्हाट्सएप और फेसबुक वाले लोग समझ पाएंगे क्या, पकड़ पाएंगे क्या, और वो कैसे इस बात को समझ पाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु स्वयं तो कीर्तन किए और कीर्तन में बहुत आंसू बहाए, लेकिन वो सोच रहे थे मैं तो हरिनाम का आस्वादन करके आंसू बहा रहा हूं, लेकिन कलयुग के जीव तो स्मार्टफोन में समाधि लगाकर फिर उनके आंखों से आंसू निकलेगा। तो फिर वो इस भक्ति के तत्व को कैसे समझ पाएंगे, इस मार्ग को कैसे अपना पाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा कि चलो मैं अपने अनुयायियों को यह सेवा देता हूं। तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को इसके विषय में विस्तृत वर्णन करने का आदेश किया कि आप ये कृष्ण तत्व के विषय में लोगों को समझाइए, जिससे कि लोग भली भांति समझ जाएं, क्योंकि भारत में विशेष रूप से आध्यात्म को लेकर इतने अनंत कोटि भ्रांत धारणाएं हैं, और निर्विशेष और सविशेष को लेकर और कितने सारे विभिन्न प्रकार के धारणाएं हैं, और जो एकाध परसेंट लोग भक्ति में जुड़ भी जाते हैं तो उनमें से 99.9% लोगों के भक्ति की धारणा कुछ मनोरंजन जैसा ही होता है कि जैसे भक्ति संगीत या इस प्रकार भजन वजन गा लिया तो फिर हो गया, अपनी भक्ति हो गई। तो इसलिए ये सिद्धांत इतना ऊंचा है, ये दास बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन है, और कलयुग में अश्लील अपवित्र और फूहड़ बातों का महासागर का दलदल इतना विशाल है, और कलयुग में बद्ध जीवों की आध्यात्म की प्रति रुचि और बुद्धि इतनी निकृष्ट है, कलयुग के जीवों की विचारधारा इतनी संकीर्ण है, और कलयुग के जीवों का आध्यात्म के प्रति उत्साह इतना उदासीन है कि ऐसे निराशावाद के परिवेश में लोग भक्ति कैसे करेंगे। तो महाप्रभु तो आनंद में थे, लेकिन प्रचारक के हृदय के अंदर एक विशेष विरोधाभास तत्व निरंतर चलता है। जैसे प्रयाग में आप लोग देखा होगा गंगा और यमुना, और जैसे ऋषिकेश के आगे अपन जाते हैं तो वो कौन सा जगह है जहां पर देव प्रयाग, दोनों तरफ से दो अलग अलग रंग की धाराएं आती हैं। हाँ, देव प्रयाग में कौन से दो आते हैं, भगीरथी और अलकनंदा दोनों आकर मिलते हैं। उसी प्रकार प्रचारक के हृदय में आनंद और विषाद, हर्ष और शोक, ये हर्ष और शोक के दोनों वेगवती नदियां एकत्रित होती हैं और समन्वय पाकर फिर आगे चलती हैं, तब जाकर प्रचार हो सकता है। हर्ष और शोक कैसा, भक्ति के नवविदा भक्ति के पालन से और भगवान श्री कृष्ण के आदान प्रदान से उत्पन्न हृदय में भक्ति से प्रेरित हर्ष, और तत्पश्चात इस जड़ जगत के लोगों के कलयुग के जीवों के दुर्दशा को देखकर, उनके शोकाकुल अवस्था को देखकर, उनके इंद्र तृप्ति के प्रति इतनी प्रगाढ़ आस्था और श्रद्धा को देखकर और उनके भविष्य में नरक में जाकर बारंबार यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित होने की भविष्य को देखकर जो हृदय में स्वाभाविक करुणावश शोक की उत्पत्ति होती है, तो ये हर्ष और शोक की दोनों नदियां जब चलकर किसी वैष्णव के हृदय में प्रकट होती हैं, तब जाकर वो व्यक्ति उस वास्तविक करुणा के गंगा नदी में बद्ध जीवों को निमग्न कर उनके चित्त को परिवर्तित कर सकता है। तब तक हम लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने भक्तिमय कार्यों में हर्ष और दूसरों की अवस्था को देखकर शोक उल्टा नहीं कर देना कि अपने माला करने की अवस्था को देखकर शोक और दूसरों की इंद्र तृप्ति को देखकर हर्ष। तो कई बार जब तक हम भली भांति साधना भक्ति नहीं कर पाते तब तक हम प्रचार कार्य भी नहीं कर पाते। इसलिए महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को यह वर्णन किया कि आप विशेष रूप से इन सिद्धांतों को लिखिए, क्योंकि भक्तों को चाहिए कि सबसे पहले ये भक्ति को किस तरह अपने जीवन में उतारे उसको ठीक से समझकर जब वो उतारेंगे और भक्ति को पालन करेंगे तब उनके हृदय में अनुभव उत्पन्न होगा। बिना भक्ति के अनुभव के हम कृत्रिम रूप से अनुकंपा व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति का अनुभव आवश्यक है, चाहे वो कितने ही स्तर पर क्यों ना हो, लेकिन वो भक्ति देवी के स्पर्श की आवश्यकता, भक्ति देवी की कृपा और भक्ति देवी का प्रसाद प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसलिए अगर हम अनुभव नहीं करेंगे उसका अर्थ है कि हम अपराध कर रहे हैं, अपघत राधा या अपराढ़, राढ़ अर्थात संतोष और अप अर्थात जो हमें भक्ति के संतोष से दूर करे। तो इसलिए महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि आप लोग आरंभ में इतना कुछ मंदिर अंदिर बनाने के चक्कर में मत पड़ो, वो आपके भविष्य की पीढ़ियां कर लेंगी। आप केवल भजन करो, संख्या पूर्वक नाम गान नटिबी कालावसानी कृतो, और उस भजन से उत्प्रेरित साक्षात्कार के आधार पर ग्रंथों का निरूपण करो। तो महाप्रभु ने बहुत स्पष्ट उनको संदेश दिया, आदेश किया। तो लगभग कई वर्ष तक, जैसे 1516 में आए और सनातन गोस्वामी पाद का तिरुभाव लगभग हुआ 1557 में, है ना, 57, और जीव गोस्वामी पाद आए वृंदावन में 41 में, 1541, 1541, तो 6 के 6 गोस्वामी एक साथ केवल 16 वर्ष रहे। लेकिन उस 16 वर्ष की अवधि में, खैर बाकी रूप और सनातन तो बहुत वर्ष से वहीं पे थे, उन लोगों ने अपना ध्यान दिया इन सिद्धांत को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए। तो इसलिए यहां पर वर्णन किया गया है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। तो हम लोगों का मेन जो धंधा क्या है इसको समझना आवश्यक है, अन्यथा चार दीवारी तो बहुत जगह है लेकिन उस चार दीवारी के अंदर क्या धंधा चल रहा है, क्या वितरित हो रहा है और क्या हमें लाभ प्राप्त हो रहा है और किस परिवर्तन के पीछे हम लोग उस चार दीवारी के अंदर जा रहे हैं। तो हम लोग जब वैष्णव सत्संग में आते हैं तो वो ऐसे कथा को सुनकर समझकर उसका अंतरीकरण करके अपने जीवन में उतार कर चित्त के परिवर्तन के पीछे हम लोग प्रयत्नशील हैं. सो द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेप. तो इसलिए यहां वर्णन आता है कि नाना शास्त्र आने कोयला भक्ति ग्रंथ सार मूढ़ अधम जन रेते हो तोरिला निस्तार. तो महाप्रभु के कहने पर रूप गोस्वामी पाद ने नाना शास्त्र प्रकट कर दिए, व्यक्त कर दिए, और इसलिए ये मूढ़ अधम जनेरे, इस जगत के मूढ़ अधम जीवों के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने ब्रज में उस समय जो बड़ा ही जंगली अवस्था था, ऐसे अवस्था में बैठकर शास्त्रों का व्यक्तिकरण किया. और इसलिए प्रभुराज्ञाय कोयला सब शास्त्रेर विचार ब्रजेर निगुड़ भक्ति कोरिला प्रचार. प्रभु के आज्ञा के अनुसार वो वहीं पर बसे रहे. तो सबसे पहली बात है कि रूप और सनातन गोस्वामी पहले वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके. उनको आदेश करने की बड़ी आदत थी. नवाब हुसैन शाह के राजनीति के वो अभिन्न अंग थे. लेकिन जो इतने विशाल साम्राज्य में राजनीति चला रहे थे, वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार एक स्थान पर बैठने के लिए भी तैयार हो गए. प्रभुर आज्ञाए कोयला. तो बिना आज्ञाकारिता के भक्ति का भाव भी हम लोग आरंभ नहीं कर पाते. तो इसलिए आदेश के अनुसार वो वहीं ब्रज में बैठे रहे. केवल यही प्रश्न किया कि इस आदेश का हम पालन कैसे करें, ये नहीं पूछा कि हम क्यों करें. तो इसलिए महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो ब्रज में बैठे. प्रभुर आज्ञाए कोयला. फिर क्योंकि सदाचार का उन्होंने प्रदर्शन किया, उस सदाचार के कारण शास्त्रेर विचार, शास्त्र के विचार की शक्ति उन्हें दी गई. तो इसलिए शुश्रूषोः श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि. ये वासुदेव की कथाओं के प्रति आकर्षण, रुचि, और ये वासुदेव की कथा क्या है, कैसे प्रकट होता है, स्यान महत सेवया, सेवा करने पर, आज्ञाकारिता को व्यक्त करने पर. तो इसलिए न केवल वो सदाचारी थे, लेकिन साथ साथ विचार भी किया. शास्त्रेर विचार, और विचार करने के पश्चात ब्रजेर निगूढ़ भक्ति कोरिला प्रचार. फिर ब्रज भक्ति को जगत के समक्ष प्रचार किया, तब जाके ग्रंथों को प्रकट किया. और रूप और सनातन जब ग्रंथ लिखते तो एक दूसरे के लिए लिखते थे, क्योंकि उस अंधकारमय घनीभूत वन के बीच न रूप गोस्वामी को मालूम था और न सनातन गोस्वामी ने संकल्प किया था, विचार किया था कि भविष्य में 5000 मंदिरों वाला ये शहर होने वाला है. तो इसलिए इतिहास के जिस मोड़ पर हम आज्ञाकारिता के रत्न को अपने मस्तक पर धारण कर उसे अपना आभूषण बनाकर चलते हैं, तब भविष्य में हमारे आज्ञाकारिता का इतिहास के ऊपर क्या परिणाम होगा, इसका कोई भी भक्त भविष्यवाणी नहीं कर सकता. हमें केवल वर्तमान में इसको लेकर चलना है कि भाई भक्ति का सबसे पहला पड़ाव है कि आज्ञा का पालन. तो इसलिए वो केवल देख रहे थे कि आज मुझे महाप्रभु के आदेश के अनुसार भजन करना है, नाम में मग्न होना है और शास्त्र के ऊपर विचार करना है, बस केवल इतना ही विचार आज का। और दिन प्रतिदिन इस प्रकार अगर हम अपने दिए गए सेवा को पूरी तल्लीनता के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ करें, तीव्रेण भक्ति योगेन, तो जिस प्रकार सूर्य नारायण के प्रकाश को किसी कांच के अंदर से, लेंस के अंदर से अगर उसको जाने का अवसर दिया जाए, तो वही सूर्य का प्रकाश जो चारों दिशाओं में जिसका फैलाव है, वही सूर्य का प्रकाश किसी कागज को जला सकता है। तो अंतर क्या है? प्रकाश तो प्रकाश है, लेकिन अंतर है तीव्रता में, उसको एक स्थान पर केंद्रित किया है। तो इसलिए यहां पर जो भक्तगण हैं वो तो सभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज इस्कॉन में अधिक से अधिक बिल्डिंगों की आवश्यकता नहीं, और अधिक ग्रंथों के वितरण की आवश्यकता इतनी नहीं। हाँ, वितरण तो करना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता है कि उन ग्रंथों के आधार पर जो मार्ग दिया गया है, उस मार्ग पर तीव्रता के साथ चलते हुए वैष्णव भक्तों का उदाहरण आते हुए बद्ध जीवों को विश्वास दिलाएगा कि भाई इस मार्ग पे चलने पर कुछ प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आरंभ के दिनों में श्रील प्रभुपाद जी ने किताब वितरण के ऊपर बल दिया, जोर दिया, क्योंकि उस समय लोगों को जानकारी ही नहीं थी, और हाँ वो आवश्यक है, लेकिन रूप और सनातन जो कर रहे थे वो ये ग्रंथ हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे हम उसे उतार सकें अपने जीवन में। तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आया है कि रूप गोस्वामी ने क्या किया। और तब रूप और सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु को जब मिलते हैं रामकेली में, तो उस समय वो अपने आप को विनम्र, अयोग्य व्यक्त करते हुए महाप्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण करते हैं। नीच जाति नीच संगी कोरी नीच काज, तोमार अग्रेते प्रभु को हिते बासी लाज। प्रभु हम नीच हैं, हमारे अंदर कोई लज्जा नहीं, हमारे अंदर कोई आशा नहीं। पोती तपन है तू तो मारा बतार, आमा बाई पतित जगते नहीं यार। आप पतित पावन हो और हमसे अधिक पतित दूसरा कोई नहीं। एक दृष्टिकोण से रूप और सनातन दोनों ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन फिर भी अपने आप को पतित बता रहे हैं। वेद निष्ठा मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म नहीं गुणे। कहते हैं कि जो व्यक्ति जानता है क्या करना चाहिए वेदों के अनुसार, फिर भी उसका उल्लंघन करता है, उसे पतित कहते हैं। तो इसलिए धर्म, जात पात या जन्म के आधार पर किसी की योग्यता सिद्ध नहीं की जाती। तो सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, इन तीनों ने भागवत और महाप्रभु के दिए गए इन सिद्धांतों को लेकर बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को व्यक्त किया कि आप किस हद तक इस मार्ग को अपनाते हो, आपकी भक्ति इसके ऊपर निर्भर होगी। तो श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में प्रचार कार्य आरंभ किए, तो पाश्चात्य देश के भक्तगण, उनका कृष्ण के विषय में पहले कोई जानकारी नहीं थी, कृष्ण कौन है क्या है कुछ नहीं जानते थे, न वृंदावन के विषय में सुने थे, न उन्होंने किसी प्रकार से गीता भागवत इत्यादि का अध्ययन किया था। लेकिन उनके मन में केवल एक भावना थी कि वो प्रभुपाद जी के प्रति आकर्षित होकर स्यान महत सेवया विप्र, उनकी सेवा में वो लग गए। और क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा करो, तो उनके आकर्षण से प्रेरित होकर उनकी सेवा में वो भली भांति लग गए थे। और तत्पश्चात उस सेवा के कारण देखते ही देखते कितना प्रचार कार्य चारों दिशाओं में फैल गया। तो इसलिए गिरिराज महाराज बताते हैं कि उनका जो दीक्षा के पहले उनका जो लीगल नेम है वो है ग्लेन टीटन। तो अमेरिका में टीटन जो है वो बहुत बड़े पर्वत शिखर का नाम है, माउंटेन का नाम है टीटन। और उनका पूरा परिवार हमेशा बड़ा गर्व करता था कि ऐसा कोई सरनेम है ही नहीं पूरे अमेरिका में, इतने विशाल पर्वत के ऊपर अपना सरनेम पड़ा है। तो जब प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी और नाम दिया गिरिराज दास, फिर प्रभुपाद ने कहा दिस इज द बेस्ट सर्वेंट माउंटेन ऑफ कृष्णा। तो उनको बड़ा आनंद आया और अपने परिवार को बोला कि मुझे वापस नाम भी मिला परिवार का पर्वत के ऊपर। तो वास्तव में वहां कोई जानता नहीं था कि वृंदावन क्या है, गोवर्धन क्या है, कृष्ण क्या है क्या नहीं है। सब लोग अपने अपने धुन में थे, किसी को किसी बात की कोई जानकारी नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन लोगों के समक्ष इस बात को प्रस्तुत किया कि भक्ति क्या है, कृष्ण के प्रति भाव क्या होना चाहिए, इन ग्रंथों को किस प्रकार हमें अपनाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी जब टाइप कर रहे थे अपने हाथों से, तो अपने हाथों से वो टाइप कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने उस दिन कहा था कि अगर किसी ने पूछा था कि गुरु की आपकी हम कैसी सेवा कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा सेवा करना चाहते हो तो देखो कि क्या आप असिस्ट कर सकते हो, मेरे कष्ट को कम कर सकते हो। तो गर्गमुनि प्रभु रास्ते में निकले तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक डिक्टाफोन है, रिकॉर्डर और डिक्टाफोन लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा और उनको लगा कि शायद प्रभुपाद को काम आएगा, क्योंकि प्रभुपाद हाथ से बैठ के टाइपिंग करते रहते हैं। तो उन्होंने तुरंत अंदर गए और उनको कहा कि ये डिक्टाफोन मिलेगा क्या, इसको कैसे चलाते हैं। तो पूरा एक घंटा उनको समझाया सिखाया। तो डिक्टाफोन को लेके आए और उनको लगा कि मैं अब प्रभुपाद को सिखाऊंगा। तो प्रभुपाद के सामने मशीन रखा, रिकॉर्डर रखा और फिर बोला प्रभुपाद को मैं आपको सिखाता हूं। प्रभुपाद ने कहा कोई जरूरत नहीं है, और प्रभुपाद सीधा मशीन लिए, उसको ऐसे ऐसे चलाए और उनको समझाने लगे कैसे चलता है। फिर उन्होंने प्रभुपाद को पूछा आप पहले ये मशीन देखे हो क्या, प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो पूरी तरह भ्रमित हो गए कि अरे मैं तो अमेरिका में जन्म लिया हूं और मेरे को एक घंटा लगा समझने के लिए, इनको कैसे समझ में आ गया। फिर प्रभुपाद ने भवानंद प्रभु को बोला, प्रभुपाद जब नाम दे रहे थे दीक्षा के समय तो उनको नाम दिया भवानंद दास। फिर प्रभुपाद ने पूछा नाम का अर्थ क्या बताओ, तो बोला जो कृष्ण के भाव में मस्त है। प्रभुपाद ने कहा वो भावानंद हो गया, तुम्हारा नाम भवानंद है, जानते हो क्या इसका अर्थ। बोले नहीं, भाव का मतलब क्या होता है। वो बोला भौतिक जगत। प्रभुपाद ने कहा हाँ, भवानंद का अर्थ क्या हो गया। तो वो सोचने लगे और लज्जित हो गए, जो भौतिक जगत में आनंद ले, ये क्या नाम दिया, दीक्षा दिया क्या दिया है। तो प्रभुपाद ने कहा भवानंद शब्द का अर्थ है कि भौतिक जगत में केवल कष्ट है, केवल दुख है, केवल एक ही सुख है, वो भक्ति करने का और भक्ति के ज्ञान का प्रचार करने का। तो जो भक्ति में और प्रचार में आनंद ले, वो है भावानंद। तो वास्तव में जब प्रभुपाद जी सबके सामने ये सब बातों को प्रकट किए, तो कभी किसी को उस बात की जानकारी थी नहीं, ये सब नई बातें थी उनके लिए। और वास्तव में 1971 तक मॉर्निंग प्रोग्राम करके कुछ नहीं था, आपकी जानकारी के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए नहीं। 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई, तो 1971 तक कोई मंगल आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम क्लास 71 में स्टार्ट हुआ। तो इस्कॉन में जो एक एक चीज जुड़ा है वो धीरे धीरे करके जुड़ा है। तो 1969 70 वगैरह में लोग जो प्रभुपाद के ग्रंथ को लेके गए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया, पैसा दिया, चेंज नहीं था, तो चेंज नहीं था तो बोला यार चेंज नहीं है क्या करूं, सामने उसका कृष्णा बुक पड़ा हुआ था या एक कोई दूसरा कोई बुक था, उसको लेके दिया, बोला चेंज के बदले ये लोगे क्या। वो पेट्रोल पंप वाला देखता है, बोला ठीक है रख लेता हूं। तो भक्त ने आके रिपोर्ट दिया कि पेट्रोल पंप पे मैंने एक बुक जो है बेच दिया, तो ये बुक बिकता भी है रस्ते पर। तो वहां से स्टार्ट हुआ, पेट्रोल पंप पे यूं दिया बुक, उस अटेंडेंट ने ले लिया। जिस भक्त ने उस समय वो एक बुक किसी को पकड़ाया, उसको पता नहीं था कि भविष्य में चलकर 50 करोड़ बुक वितरित होंगे इस तरह। नहीं तो तब तक प्रभुपाद के बुक्स केवल बुक स्टोर में रहते थे, और बुक स्टोर में वो रहते थे और बुक स्टोर में लोग आके ले सकते थे, वैसे ही चल रहा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो एक एक भक्ति के कार्य आरंभ किए वो वास्तव में ऐतिहासिक था। और उस समय किसी बात को, इस बात की जान, किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं थी कि आगे चलकर ये कौन सा रूप धारण करेगा। प्रभुपाद जी स्वयं जो है कुकिंग किया करते थे आरंभ में, स्वयं अपने हाथ से बनाते थे, लोगों को खिलाते थे। और आरंभ के दिनों में जो झूठे बर्तन भी प्रभुपाद धोते थे। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद को मिलने आए, वो बड़ा ही बूढ़े व्यक्ति थे, और प्रभुपाद जी ने मैथुन और सेक्स लाइफ के विषय में बहुत भारी बोला कि ये तो कुत्ते का ही जीवन है। तो व्यक्ति बोलता है लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो काफी देर वो बहस करने लगा, तो प्रभुपाद समझ गए कि अब इसके समझ से परे है। तो प्रभुपाद ने कहा चलो प्रसाद लेके आओ, इसको दो। तो एक गुलाब जामुन लेके आए, और प्रभुपाद जी स्वयं उसको बनाते थे। इतना बड़ा गुलाब जामुन उसने हाथ सामने किया, उसके हाथ में रखा, उसके हाथ में रखा तो गुलाब जामुन लेके खड़ा रहा। प्रभुपाद ने कहा खाओ उसको खाओ। तो फिर उसका एक बाइट लिया तो सारा रस साइड से निकलने लगा, और नीचे नीचे उसका पूरा जो ब्रांड न्यू कोट था उसको लगने लगा। प्रभुपाद ने कहा ऐसे नहीं, पूरा अंदर डालो। तो पूरा गुलाब जामुन अंदर लेके काफी देर तक उसको चबाने के बाद जब पूरा निकल गया, वो बोलता है एक और मिलेगा क्या। तो भक्त लोग लाके एक और दिए, वो बिना खाए मुड़ के चलने लगा। प्रभुपाद ने कहा अरे इसको भी खाओ, कहाँ रास्ते पे लेके जा रहे हो। वो कहते नहीं, रात को जब मैं दारू पीऊंगा उसमें डालकर पीऊंगा, टेस्ट बढ़ेगा। प्रभुपाद ने कहा अरे पागल हो गए हो क्या, ये प्रसाद है भगवान का। बोले अरे जो भी हो मैं जानता हूं कैसे मजा लेना है। तो प्रभुपाद सर पीट लिए, बोले यार अब कैसे इनके स्तर पर उतर कर इनको समझाएं। फिर वो प्रभुपाद ने जाते जाते कहा ठीक है घर पे ले जाओ, लेकिन विनती करता हूं दारू के साथ मत लेना। तो क्या चेतना थी लोगों की, और कहां पर जाकर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जैसे इतना बड़ा वैश्विक संस्था की स्थापना की, सोचिए। एक भक्त किताब वितरण कर रहे थे, तो किसी को किताब दिखाया तो किताब देखकर बोलता है कि अच्छा ये अपना वो रीइनकार्नेशन वाला जो बुक है, सेकंड चांस। तो वो बुक देख के बोले ये क्या है, तो बोले अजामिल को सेकंड चांस मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो व्यक्ति बोला वास्तव में बताऊं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। बोले अच्छा क्या हुआ, बोले मेरा सर्जरी चल रहा था और सर्जरी के समय एनेस्थीसिया दिया, और जब एनेस्थीसिया दिया तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं शरीर के बाहर आ गया और ऊपर से मैं पूरे सर्जरी को देख रहा था, और फिर पूरा सर्जरी समाप्त होने के बाद मैं अंदर आ गया और जो लोग बात कर रहे थे वो सब मुझे ध्यान है। तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो भक्त ने कहा इसलिए हुआ जिससे कि तू ये बुक ले सके, जिससे कि तुम अपने शेष मनुष्य जीवन की महिमा को समझ सको। अन्यथा अनुभव तो बहुत होंगे लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है अगर तुम नहीं समझो तो फिर पतित ही बन के रहोगे। इसलिए रूप और सनातन महाप्रभु को कह रहे हैं कि जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण अधम पतित प्रभु आमि द्विजन। जगाए और मधाए की तुलना में हम लोग कोटि कोटि गुण अधिक पतित हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कम से कम ब्राह्मण जाति तार नवद्वीपे घर, नीच सेवा नहीं कर नाही नीचे रकुर पर। कम से कम वो लोग ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर नवद्वीप में थे, हम जैसे नीच लोगों की नौकरी चाकरी तो नहीं की। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी कौरी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोहे संगे अमार संगम। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी और म्लेच्छ लोगों का कर्म करने में हमने अपना जीवन बिताया प्रभो, इसलिए हम लोग बड़े ही निकृष्ट हैं, हमारा आप उद्धार कीजिए। और जब तक आप उद्धार नहीं करेंगे भक्ति का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकता। और इसलिए अगर आप अपने पतित पावन भाव को व्यक्त करना चाहते हो तो हम सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आमा उद्धारिया जदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। हमारा उद्धार करके आपका पतित पावन नाम सफल होगा, आप पतित पावन के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। इसलिए आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। तब फिर महाप्रभु उनको स्वीकार करते हैं और उनको आदेश करते हैं कि कैसे वो इन ग्रंथों का निरूपण करें और कैसे लोगों के समक्ष इस गौड़ीय सिद्धांत को प्रकाशित करें, क्योंकि ये सिद्धांत को जो स्वीकार करके अपने जीवन में उतारेगा उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे, इस ग्रंथ को अपनाएंगे नहीं, और जब तक ये ग्रंथ हमारे अंदर नहीं उतरेगा तब तक परिवर्तन कैसे होगा? अर्थात दवा को चाहिए, औषधि को चाहिए कि वो हमारे अंदर जाए, है कि नहीं? बहुत साल पहले मुझे मलेरिया हुआ था और भक्तिवेदांत अस्पताल में मैं एडमिट था, 18 साल 20 साल पहले की बात है। और तब वहाँ पर बहुत बुखार बढ़ गया, तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि IV चढ़ाना पड़ेगा। तो एक वहाँ पर नर्स आ गई और वो डिवोटी नर्स थी, तो मुझे देखकर घबरा गई, बोले अरे अभी प्रभु जी को कैसे हम चुभाएंगे। तो फिर वो बहुत ही धीरे धीरे करके जो है ऐसे ऐसे IV लगाने के प्रयास में इंजेक्शन चुभा रही थी। वो इतना धीमे से था कि कभी यहाँ कभी यहाँ, वो कष्ट कम देने के प्रयास में बड़ा कष्ट दे रही थी। तो मैंने कहा रुक जाइए आप। तो फिर मैंने वहाँ पर अपने जो दूसरे आदि केशव प्रभु के पहले जो थे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर एमएल राव, उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई जो भी करना है जल्दी करो, आपने ऐसे किसी को भेज दिया जो मुझे देखकर टेंशन में, और उसका हाथ कांप रहा है और हाथ कांपते हुए मुझे और चुभ गया, तो और किसी को भेजो। तो उसने फिर, मैंने कहा कि नॉन डिवोटी को भेजना, जिसको पता नहीं हम कौन है क्या है। तो उन्होंने बिल्कुल जो है, जो डिवोटी नहीं थे, ऐसा एक नर्स भेजी। वो नर्स आई पूरे आत्मविश्वास के, बोले महाराज क्या हो गया, और सीधा धड़ाम करके इतना जोर से चुभाया, सीधा एक ही झटके में आईवी लग गया। क्योंकि जब तक कभी थोड़ा झटका ना दो, तब तक आईवी का लाइन भी अंदर नहीं जाता। क्यों भाई डॉक्टर साहब? तो इसलिए जब तक आईवी चढ़ाने के लिए आप थोड़ा कष्ट नहीं लोगे, दवा अंदर कैसी जाएगी? तो इसलिए शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। अरे कथा रुचि वो तो दवा है भैया। स्यान महत सेवया विप्रा। जब तक सेवा का थोड़ा बहुत कष्ट नहीं उठाएंगे और जब तक कुछ चुभेगा नहीं और तब तक लाइन अंदर नहीं पहुंचेगा, वो दवा तो बाहर गिरेगा, तो फिर क्या लाभ? इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं उस एक पंडित को, जो बड़ा अच्छा कविता लिख के लाकर बोलता है जगन्नाथ की आत्मा है महाप्रभु, ऐसा करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी का दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाता है। और कहते हैं उनको, जाह भगवत भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। अरे कुछ ऊट पटांग तुमने लिख डाला, महाप्रभु को जगन्नाथ की आत्मा बता दी, मतलब जगन्नाथ को सामान्य जीव मान लिया गया और महाप्रभु को भी ऐसी जीव मान लिया। अगर भागवत को समझना हो, जाह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, वैष्णवों के बीच रहकर वैष्णवों की सेवा करते हुए भागवत को पढ़ो, तब एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, तब जाकर चैतन्य महाप्रभु का चरण का आश्रय आपको प्राप्त होगा, तब आश्रय मिलेगा। चैतन्येर भक्त गणेर नित्य कर संग, तबे तो जानीबा सिद्धांत समुद्र तरंग। इस सिद्धांत के समुद्र के तरंग में अगर आपको गोते लगाने हो, तो चैतन्येर भक्त गणेर नित्य कर संग, महाप्रभु के अनुयायियों का नित्य संग करो, तबे तो जानीबा सिद्धांत समुद्र तरंग, अन्यथा आप इस सिद्धांत को नहीं समझ सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मार्ग बताया है। तब महा स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको कहते हैं, तबे तो पांडित्य तोमार होइबे सफल, कृष्णेर स्वरूप लीला वर्णिबा निर्मल। हाँ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि आप बड़े पंडित हो और आपने कई कपोल कल्पित कविताएं लिख दी हैं और आप अपने काव्य और प्रकाशन को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बड़े लालायित हो, लेकिन अगर बुद्धि से हम भगवान को पा लेते तो बड़े बड़े पंडित भगवान को पा लेते, अगर सिद्धि से अगर पा लेते तो कई योगी गण पा लेते, अगर श्रेष्ठ कर्म के प्रदर्शन से भगवान को कहीं पा लेते तो कितने ही श्रेष्ठ भक्त हो जाते, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सारे कार्य सफल नहीं हो सकते भक्ति के क्षेत्र में, क्योंकि भक्ति केवल याचक के भाव में भगवान के किसी वैष्णव भक्त के सामने हाथ फैलाने पर, उनके संतुष्ट होने पर जब वो हमें दान करे, तो दान के रूप में किसी याचक को प्राप्त होती है भक्ति, इसलिए कहते हैं तबे तो पांडित्य तोमार होई बे सफल, तब आपका पांडित्य सफल होगा और तब कृष्णेर स्वरूप लीला वर्णिब निर्मल, कृष्ण की लीलाओं को आप भली भांति समझ सकते हो और समझा सकते हो। तबे से ही कवि सबार चरणे पोड़िया, सबार शरण लैया दंते तृण लैया, तब वो पंडित अपने दांत में तृण लेकर सभी वैष्णवों के चरणों का अवलंबन करते हैं और तबे सबे भक्त करे अंगीकार कोयला, तार गुण कही महा प्रभु रे मिलाइला। तो तब जैसे ही भक्तों के सामने उसने आत्मसमर्पण किया, उन भक्तों ने महाप्रभु के सामने उसको प्रस्तुत किया कृपावश, और इसलिए कहते हैं से कवि सर्वत्यजी रोहिला नीला चले गौर भक्त गणेर कृपा के बुझीते पारे। वो हर प्रकार की लज्जा को त्याग कर, बड़ा महत्वपूर्ण है, सेई कवि सर्वत्यजी रोहिला नीलाचले, सब कुछ छोड़कर नीलाचल में वो रहने लगा और गौर भक्त गणेर कृपा के बुझीते पारे। तो वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें निर्लज्ज होना चाहिए, वैष्णवों के ही संग में हमें स्तुति मिले निंदा मिले जो कुछ भी प्राप्त हो, हमें समझना चाहिए कि हर प्रकार की उपलब्धि इस संग में ही प्राप्त है। तो इसलिए कहा है सेई कवि, इतने विपुल विद्वत्ता का प्रदर्शन करने वाले पंडित स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा सामूहिक रूप से सभी के समक्ष उनकी आलोचना हुई, उनकी निंदा हुई, उनका अपमान हुआ, ऐसे पब्लिक अपमान को उन्होंने स्वीकार करके वहीं पर उसी समाज में आगे रहने का विचार किया। से कवि सर्वत्यजी, तो मान अपमान इत्यादि के भावना को तिलांजलि दे दी। सर्वत्यजी रोहिला नीला चले, सही मोर प्राण धन सही मोर आभारण, जो भी हो वैष्णवों की कृपा से ही जो कुछ प्राप्त हो, उनके हस्त कमल का आशीर्वाद मिले या फिर झापड़ मिले, जो कुछ भी मिले हम इस वैष्णव संघ में ही पाएंगे। सही कवि सर्वत्यजी रोहिला नीला चले, क्योंकि अब वो समझ गए कि हाँ केवल बुद्धि का प्रयोग करके ज्ञान तक ही हम पहुंच सकते हैं, भक्ति चाहिए तो वैष्णवों की कृपा चाहिए। गौर भक्त गुणेर कृपा के बुझीते पारे, महाप्रभु के भक्तों की कृपा का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए शास्त्र के मर्म को समझना हो तो रूप गोस्वामी पाद ने जिस तरह हम लोगों को दिशा दी है उस दिशा में चलना है। अतः गुदु गुरु पादाश्रय विश्रम्भेण गुरुर सेवा, गुरुर पादाश्रय अर्थात केवल दीक्षा गुरु नहीं, जितने वैष्णव हैं अगर हम अपने आप को दास बता रहे हैं कि उनके सेवक बनने का निरंतर अभ्यास करना है। अरे ये तो हमारे साथ वाला भक्त है, इसका मैं क्या दास बनूंगा, ये कोई दास बनने लायक है क्या, कभी टाइम बिताया इसके साथ, कभी सेवा किया है इनके साथ, जानते हो ये कौन है, मैं इनकी सेवा करूं इनका दास बनूं, अब क्या करें, आगे दास सरनेम लगा लिया अपन ने, तो यही अपेक्षा भगवान कर रहे हैं कि चाहे उचित लगे अनुचित, अच्छा लगे न लगे, लेकिन संकल्प कर लिया वैष्णवों के सामने अग्नि के सामने गुरु के सामने कि हम आपके दास हैं, एंड आई विल बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट. इसको वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया गया है. अब इतना सब होने के बाद बस हमारी परीक्षा की घड़ी है कि कैसे हम अपने उस दासत्व को व्यक्त करें. तो इसलिए श्रीला रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की, जिससे कोई भी सामान्य व्यक्ति जो जुड़े वो समझे कि ये क्या है. कि भक्ति दिखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन भले कोई हमारा हाथ को दबाए दर्द होगा इतना नहीं, कोई हमारे पैर को दबाए दर्द होगा इतना नहीं, कोई कमर को दबाए दर्द होगा इतना नहीं, लेकिन कोई गला दबाए तो फिर क्या हो रहा है वो भी नहीं बोल पाते, क्योंकि सबसे खतरनाक है वो. उसी प्रकार भक्ति क्या है, ज्ञान है, वो अहंकार के पैर को दबाने के समान है. कर्म है, वो अहंकार के छाती को दबाने के समान है. लेकिन भक्ति अहंकार के गले को दबाने की तरह है. ऐसा पकड़कर जब अहंकार के गला को जब घोटने लगते हैं तो ऐसा चीत्कार मारता है, उसका फिर परिणाम हम लोग भक्ति के अपने दैनिक जीवन में देखते हैं. लेकिन क्या करें, हमने ही तो चॉइस किया है. आ बैल मुझे मार, मेरे अहंकार का दमन करो, मुझे नाम चाहिए, इतना हट किया, इतना लड़ाई किया, दीक्षा दो दीक्षा दो दीक्षा दो, जल्दी करो, मुझे ये नाम चाहिए. लेकिन पहले ही नाम पर ध्यान देते रह गए. आगे जो छोटा सा नाम था वो सबसे खतरनाक निकला, दास. 2000 में 98-99 में तब मैंने वेडनेसडे के समय, हर वेडनेसडे को मैं लेक्चर देता था अपने गीता के ऊपर, और फिर भागवतम फर्स्ट कैंटो स्टार्ट किया अपने मंगल कृष्ण प्रभु वहीं से कनेक्ट हुए. इस्कॉन में आते थे ऑफिस से डायरेक्ट, तो गीता हुआ उसके बाद भागवतम स्टार्ट किया फर्स्ट कैंटो. तो एक वहां पर एक शुगर मर्चेंट थे, हाँ उनका नाम था जो भी था, अच्छे मित्र थे मेरे. तो गीता का पूरा सेशन अटेंड किया, उनको काफ़ी प्रेरणा हुई. तो पहले हम लोग गीता के लेक्चर के बाद कुछ देते नहीं थे प्रसाद वसाद. तो फिर वो मुझे आके बोलने लगे कि भाई अभी भागवतम शुरू हो रहा है, प्रसाद तो मिलना चाहिए. मैंने कहा क्या करें, बजट में नहीं है, बजट में केवल संडे फीस्ट का है, बाकी वेडनेसडे तो अपना एक्स्ट्रा है, तो केवल भागवत से ही पेट भर लेते. उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, मैं स्पॉन्सर करूंगा. मैंने कहा नहीं जरूरत नहीं, चल रहा है, चलने तो आदत लगी, फिर रोक नहीं सकते बाद में, अभी किसी को आदत ही नहीं है तो चल रहा है, सब संतुष्ट हैं. अगर एक दिन स्टार्ट किया फिर बंद किया तो असंतुष्ट हो जाएंगे. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जब तक फर्स्ट कैंटो चलेगा मेरी ओर से स्पॉन्सर. मैंने कहा सोच लो बाबा, ये भागवत जो है लंबा भी चलता है. बोले नहीं नहीं फर्स्ट कैंटो कितने चैप्टर है? मैंने कहा 19 अध्याय है. हाँ ठीक है मेरी ओर से. तो बिल्कुल उन्होंने फिर सामने भगवान थे, तो मैंने कहा संकल्प करते हो क्या? तो हाँ भगवान के सामने संकल्प है. अरे क्या, मैं बिजनेसमैन हूँ, जुबान दे दिया तो पक्की है. फर्स्ट कैंटो स्पॉन्सर हो गया 98 में, उसको पता नहीं था फर्स्ट कैंटो 2002 तक चलेगा. 3.5-4 साल चलाया मैंने, 2 साल बाद मेरे पास आके बोला और कब तक चलेगा? थोड़ा चैप्टर फास्ट करते हैं, काफी डिटेल में बहुत सुना दिया आपने. मैंने कहा क्यों क्या हो गया आपको, स्पॉन्सरशिप की चिंता? नहीं 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 ऐसा नहीं है, अपने को भी सुनना है, बाकी कैंटो भी तो सुनना है ना. अब वो भी क्या बोले. तो उनका एक माइंड में बहुत था कि मतलब वो मेरे से आकर्षित क्यों ज्यादा थे, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया हूं, तो उनका मेन पॉइंट वो था। तो राधानाथ महाराज इसको बराबर समझते थे क्योंकि पहले से वो आ रहे हैं, है ना। तो वो आके मेरे को बोलते थे, आप भागवतम सुना रहे हो लेकिन आप लोग के यहाँ पे कई लोग अलग अलग कोई भी जाति के लोग सुना देते हैं भागवतम, ऐसा नहीं, सही नहीं है वो, ब्राह्मण भागवतम बोलना मतलब व्यासपीठ, मतलब केवल ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लिया है वो ही दे सकता है। मैंने कहा लेकिन ऐसा तो नहीं है वाले, अरे यार आपके प्रभुपाद जी तो बहुत कुछ लिख दिए लेकिन मेरा आपके साथ कनेक्शन है ब्राह्मण, तो मैं महाराज को जाके बोलता था यार ये ऐसा अजीब बोलता रहता। बोले यार वो मेरे को बहुत साल पका चुका है, मैं उसको नहीं झेल पाया, तुम झेलो अभी। तो एक दिन जो अपना ब्रज बिहारी प्रभु ज्वाइन हुए थे और फिर उनका उनको शेविंग करना था, तो महाराज के पास वो गए बोलने कि भाई मैं शेविंग करना चाहता हूँ, आशीर्वाद दो। मैं उनको लेके गया था, तो महाराज ने ब्रज बिहारी प्रभु को पूछा कि कौन शेविंग करेगा, तो उनका कोई ब्रह्मचारी जो है नीचे ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे मैं करा लूंगा। महाराज ने मुझे देखा और बोला ये करेगा तुम्हारा शेविंग। मैंने कहा महाराज मैंने कभी किसी का किया नहीं, मेरे को डर लगता है खून वून निकल जाएगा, मैं नहीं करूंगा। बोले करोगे, मैं कह रहा हूं। तो मैंने कहा ठीक है। तो ब्रज बिहारी प्रभु को बोला भैया सावधान रहना, मुझे पता नहीं कैसे करना है। तो मैं नीचे उसको लेके गया, मैं स्टार्ट हो गया। उसी समय संयोगवश वही जो स्पॉन्सर था महाराज को मिलने आया, तो महाराज के पास जैसे ही प्रणाम करके रूम पे बैठा, महाराज ने कहा एक दृश्य दिखाना चाहता हूं, और महाराज उसको पकड़ के सीधा नीचे बाथरूम में लेके आए। और वो पूछ रहे महाराज वेयर आर यू टेकिंग मी, महाराज ने कहा वेरी इंपॉर्टेंट सीन आई वॉन्ट टू शो। तो उसको नीचे लेके आए और मैं जो है गमछे में उसका शेविंग कर रहा हूं, और जैसे ही वो स्पॉन्सर आके देखा कि मैं शेविंग कर रहा, बोले गौरांग जी आप नाई बन गए। ये कैसे? एंड देन वो महाराज को देख के बोलता है बट ही इज ब्राह्मण, व्हाई इज डूइंग दिस। महाराज देगा दैट आई विल एक्सप्लेन अपस्टेयर्स, लेट अस गो। महाराज मूड में आते हैं तो क्या क्या कर सकते, कोई भरोसा नहीं। और मैं भी समझ नहीं पाई क्या हो क्या रहा है करके, अचानक कोई बाहर के आदमी को महाराज लेके आ रहे जब शेविंग चल रही, क्या हो गया। फिर महाराज ने बाद में बताया कि मैं उसको दिखाना चाह रहा था कि भाई तुम ब्राह्मण ब्राह्मण बोलता है लेकिन महाप्रभु के मिशन में महाप्रभु ने कहा नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो गोपी भरतुर पद कमलोर दास दासानुदास। तो क्योंकि पहले मैं बहुत बार बोल चुका हूं, वो कभी माना नहीं, और अभी आपके ऊपर उसकी श्रद्धा है, तो मैं दिखाना चाह रहा था आपके माध्यम से कि देखो आपके भागवत प्रवक्ता क्या कर रहे हैं। तो इसलिए स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्, ऐसे सेवा के भाव से फिर हम वासुदेव कथा रुचि भागवत और उसके प्रति, और इसलिए सत चित और आनंद, सत अर्थात संधिनी शक्ति, चित अर्थात संवित शक्ति, और ये संवित शक्ति के जो मूल देवता हैं वो है बलराम जी, जो जानते हैं सारा ज्ञान किस माध्यम से हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं, वो सारा ज्ञान जो शास्त्र का मूल विषय है वो बलराम जी उसके अधिष्ठाता देव हैं। तो इसलिए अभी शनिवार और रविवार को हम लोग 4 लेक्चर करेंगे, शनिवार सुबह शाम, रविवार सुबह और शाम, बलराम जी के ऊपर। और मेरे ख्याल से गुरुवार से ही शाम को स्टार्ट है ना, गुरुवार संध्याकालीन 7 बजे से, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार और रविवार का सुबह में भी हम लोग करेंगे बलराम जी और उनके तत्व और उनकी लीला, और उनसे जो समुचित ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि कैसे हम उस ज्ञान को उतार कर उचित दास बन सकें। ये सारा ज्ञान किस लिए है? जिससे कि हम और अधिक तीव्रता से दास बन सके और भली भांति अपने मिथ्या अभिमान का गला घोट सके, अपने अहंकार का दमन कर सके। इसलिए है ये। तो इसलिए अगर इसी शास्त्र को पढ़ पढ़कर हमारा अहंकार और मोटा होता चला जाए तो फिर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया, दवा को अपन ने सही जगह नहीं डाला है। इसलिए जब हम भागवत का अध्ययन श्रवण इत्यादि करें वैष्णव भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, वो दवा की तरह जाकर हमारे अहंकार को, अहंकार के ट्यूमर को कम करे और फिर हमारे भक्ति भाव का वर्धन करे। इस तरह सही नली में वो जाए तब वो काम करेगा, है कि नहीं? भोजन को हम नासिका के अंदर डालेंगे तो पोषण नहीं होगा, सांस अवरुद्ध होगा। उसी प्रकार ये सारा ज्ञान सही जगह सही दिशा में चलनी चाहिए और वो वैष्णवों के कृपा के सिरिंज के माध्यम से आईवी की तरह हमारे सिस्टम के अंदर प्रवेश करेगी और तब जाकर धीरे धीरे हम अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पुनर्जागृत कर पाएंगे। जय श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। इताय गौर प्रेमानंदी।